सिद्धेभ्यो ॐ नमः सिद्धेभ्यो ॐ नमः सिद्धेभ्यो ॐ शुद्धात्मने नमः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणं सिद्धमनन्तमणिन्दिय मणुवमपत्थसौखमणवज्रं केवलपहोहनिज्य दुन्नयतिमिरं जिणं नमः। यह श्री धौला शास्त्र जो वीरसेन आचार्य ने लिखा हुआ था, यानी यह टीका है षटखंडागम ग्रंथ की, जो भूतबली और पुष्पदंत आचार्यों ने श्री वीर धरसेन आचार्य के उपदेश के अनुसार यहाँ लिखा था। उसमें हम 94वें पेज पर आए थे। अभी हमारा विषय जो चल रहा है, पहले ग्रंथ का अवतार होता है तो उसमें चार बात बताई थी, चार बातें उसमें उपक्रम, फिर निक्षेप, नय और अनुगम, ऐसे चार बातें बताई उन्होंने। उसमें से अनुगम का निरूपण करते हुए यहाँ ये जो दो नंबर का मूल जो षटखंडागम है उसका दो नंबर का सूत्र यहाँ उन्होंने बताया है कि इससे जीव स्थान की उत्पत्ति हुई है। इससे का अर्थ उन्होंने कहा कि प्रमाण से जीव स्थान शास्त्र की उत्पत्ति हुई है, क्योंकि जीव स्थान प्रमाण है और वो भी प्रमाण से उत्पन्न हुआ है। तो उसमें ये प्रमाण कौन कौन से है, तो द्रव्य प्रमाण और भाव प्रमाण के भेद से दो प्रकार के हैं, ऐसा उसमें कहा। और भाव प्रमाण के उन्होंने चार भेद बताए थे। सम्यक ज्ञान प्रमाण है, तो वैसे मति ज्ञान प्रमाण, श्रुत ज्ञान प्रमाण, अवधि ज्ञान प्रमाण, मनपरे ज्ञान प्रमाण, और वहाँ ज्ञान नहीं लिखा है तो वहाँ तो आभि निबोधिक कहा, मति ज्ञान के बदले आभि निबोधिक, और उसके आगे भाव प्रमाण ऐसा शब्द लगाया, यानी श्रुत भाव प्रमाण, अवधि भाव प्रमाण, मनपरे भाव प्रमाण और केवल भाव प्रमाण, ऐसा शब्द जोड़ा था उसमें। तो उसमें सबसे पहला जो आभि निबोधक शब्द है ना, क्या शब्द है, आभिनिबोधिक, ये हम जिसको मति ज्ञान कहते हैं। तो उसमें ये मति ज्ञान उत्पन्न होते हैं, तो मति ज्ञान क्या बात है, तो पहले निमित्त बताया उसका, तो पांच इंद्रिय और मन के निमित्त से। फिर यहाँ कर्मों का भी कुछ, कर्मों में भी कुछ वहाँ वेरिएशन होते हैं, वहाँ भी कर्मों की कुछ अवस्थाएं उपलब्ध रहती है, तो वहां कहते हैं मति ज्ञानावरण जो कर्म है उसके क्षोभशम से। जब यहाँ मति ज्ञान है जीव को तो सामने मति ज्ञानावरण कर्मों का क्षोभशम पाया जाता है। तो यहाँ व्यवहार शास्त्र में, निमित्त शास्त्र में ऐसा कथन आता है कि मति ज्ञानावरण के क्षोभशम के कारण ज्ञान पैदा हुआ। ज्ञान कर्मों से पैदा नहीं होता है, ना ही कर्मों की किसी अवस्था से पैदा होता है, उल्टा तो वहाँ कर्मों का सद्भाव है, वो तो जो ज्ञान की पूर्ण शक्ति है, केवल ज्ञान की, वो प्रकट नहीं होने देती है ना। तो यहाँ दो निमित्त बताए, एक तो बाह्य में पांच इंद्रिय और मन, और अंतरंग निमित्त यानी नियम रूप निमित्त, अंतरंग यानी अंदर वाला और बाह्य यानी बाह्य वाला, ऐसा नहीं है। तो नियम रूप निमित्त को अंतरंग निमित्त कहते हैं। तो कर्मों की कौन सी अवस्थाएं पाई जाती है, तो उसको कहते हैं मति ज्ञानावरण कर्मों का क्षोभशम। अभी क्षोभशम की कल हमने रविवार को यहाँ चर्चा हुई थी, तो क्षोभशम उसे कहते हैं कि कुछ क्षय होता है, कुछ उपशम होता है, कुछ उदय होता है। तो मति ज्ञान, अभी ये बातें आगे भी चलकर आएगी डिटेल में। तो मति ज्ञानावरण ये कर्म जो है ये देशघाती प्रकृति है, वो पूरा घात नहीं करती है, जैसे केवल ज्ञानावरणीय जो प्रकृति है वो अपना प्रतिपक्ष जो केवल ज्ञान है वो केवल ज्ञान का पूरा घात करती है, ज्ञान का पूरा घात नहीं करते। केवल ज्ञान का पूरा घात यानी केवल ज्ञान पर्याय में प्रकट नहीं होता तो हम कहेंगे यहाँ केवल ज्ञानावरण का उदय है। ऐसा मति ज्ञानावरण जो कर्म है वो पूरा कभी उसका उदय हो और जीव का मति ज्ञान भी पूरा ढक जाए ऐसा कभी भी नहीं होता। किसी भी जीव में, निगोद जीव में भी कुछ न कुछ मति और श्रुत ज्ञान वहाँ भी उगाड़ रूप रहता ही है। बहुत छोटा कपड़ा हो तो हम ओढ़ ले तो सिर ढकते तो पैर नंगे रह जाते और पैरों को ढके तो सिर खुला रह जाता है, तो जैसे पूरा कवर नहीं कर सकता। तो ऐसे मति ज्ञान आवरण को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं कि वो पूरा ही आवरण करे मति ज्ञान के ऊपर, ऐसा कभी नहीं होता। उसका नाम है देशघाती। अब इसमें जो दो प्रकार के वो स्पर्धक पाए जाते हैं अनुभाग की अपेक्षा, उसमें जो व्यक्ति का अंश है उसको अभी हम स्पर्धक के रूप में बताएंगे, उसके डिटेल में अभी तो नहीं जाएंगे। तो उसके सर्वघाती स्पर्धक और देशघाती स्पर्धक होते हैं। प्रकृति तो देशघाती है परंतु उसमें सर्वघाती प्रकार के स्पर्धक है और देशघाती प्रकार के स्पर्धक है। तो यदि सर्वघाती का उदय हो जावे तो पूरा ही मति ज्ञान मिट जावे। इसलिए क्या होता है कि सर्वघाती का उदय होता ही नहीं है। तो उदय किसका होता है? तो देशघाती का होता है। तो सर्वघाती तो रहते हैं उसमें, तो वो तो भविष्य में पड़े रहते हैं और जब वो उदय के सन्मुख हो जाते हैं तो देशघाती रूप से होकर उदय में आते हैं। तो उस अपने ही रूप से उदय नहीं आना फिर भी खिर जाना, इसको कहते हैं उसका क्षय, उदयाभावी क्षय, उदय का अभाव। सर्वघाती के उदय का अभाव ये क्षय कहलाता है। भविष्य में जो निषेक उसके पड़े रहते परमाणु वो उस रूप उदय में नहीं आते हैं, अपनी जगह छोड़कर नीचे नहीं आ सकते, तो उसको कहते हैं वो उपशम हुआ, अपनी जगह में कायम रहे, तो उसको कहते हैं सदवस्था रूप उपशम। और उदय होता है देशघाती स्पर्धकों का, तो ये मत इसको कहते हैं क्षयोपशम हुआ, मति ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम हुआ, ये निमित्त है। और यहाँ जीव में विशिष्ट मति ज्ञान का उघाड़ पाया जाता है। तो यहाँ निमित्त की भाषा चल रही है। बाह्य में मन और पांच इंद्रिया निमित्त रूप से है, मति ज्ञानावरण कर्म का क्षोभशम वो भी निमित्त रूप से है। अब ये जो मति ज्ञान होता है वो उसका क्रमिक कैसा होता है? तो सबसे पहले अवग्रह होता है, फिर यह होता है, फिर अवय होता है, फिर धारणा होता है। नॉट नेसेसरी कि चारों स्टेप्स में से पसार हो जावे, कहीं कहीं अवग्रह होकर रुक जाता है, उपयोग अन्य इंद्रियों द्वारा चला गया तो वो अवग्रह होकर छूट गया वो ज्ञान। किसी का अवग्रह हुआ यहा हुआ बाद में छूट गया, किसी का अवग्रह या अवाय तक गया छूट गया और धारणा तक गया तो क्या होता है वो कालांतर से भी याद में आ सकता है। यानी दृढ़ ऐसे ज्ञान का संस्कार हो जाता है कि वो 4 साल के 50 साल बाद भी उसको हम याद कर वो अपने ख्याल में आती है कोई बात। हाँ पहले तीन हुए बिना आगे का होता ही नहीं। जब जब इहा बिना है कहेंगे तो अवग्रह पूर्वक ही इहा होती है। अवग्रह को कहते हैं आद्य ग्रहण, सबसे पहले जो हुआ वो अवग्रह। अवग्रह के पूर्व भी कुछ होता होगा कि नहीं होता होगा, आप क्या कहते हैं? दर्शन होता है। यहाँ शुद्ध ज्ञान की बात ही नहीं है, शुद्ध ज्ञान तो बाद में होगा मति ज्ञान। अभी तो मति ज्ञान के पहले क्या होता है इसकी मैंने प्रश्न पूछा, ख्याल है ना? तो दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है। तो पहले दर्शन हुआ, फिर अभी मति ज्ञान का जब आरंभ हुआ तो ज्ञान का आरंभ होते ही सबसे पहले जो ज्ञान, मति ज्ञान की बात चल रही है, तो उसको कहेंगे हम अवग्रह हुआ। अवग्रह के बाद हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे उसमें। तो ये सेकंड लाइन में है ना, अवग्रह इहा अवाय और धारणा रूप, यानी ये उसके चार भेद है मति ज्ञान के, क्रम से होते हैं। अवग्रह होने के बाद इहा होगी, इहा पूर्वक यानी उसके पश्चात ही अवाय और उसके पश्चात ही धारणा। तो सबसे समझो भी किसी भी इंद्रिय के द्वारा हम पदार्थ को जानने के लिए उद्युक्त हो गए, हमारा उपयोग यहाँ से यहाँ आया तो पहले दर्शन पूर्वक दर्शन हो गया, दर्शन के पश्चात सबसे पहले जो पदार्थ संबंधी कुछ ग्रहण हुआ, यहाँ ग्रहण यानी ज्ञान के अर्थ में है, दर्शन में भी ग्रहण शब्द आएगा ज्ञान में भी आएगा, तो इसलिए जो सबसे मति ज्ञान में जो सबसे आद्य ग्रहण होगा तो उसको हम कहेंगे अवग्रह। तो अभी क्या पदार्थ है उसका निर्णय नहीं हुआ है, बस उसका परसेप्शन हुआ है। तो उसके बाद जो होगा कि विशेष जानने की प्रयत्न होता है, यह कोई संशय रूप ज्ञान नहीं है। जैसे वो मिथ्या ज्ञान में जो बताया जाता है, अरे ये चांदी है कि रूपा है, यानी दो विरुद्ध कोटि में डोलायमान रहता है, ऐसा नहीं है। कुछ पदार्थ ख्याल में आया और फिर उसको अधिक जानो, ऐसा हम जैसे हम कैमरा में पहले थोड़ा सा फिर फोकस लगाते रहते हैं और स्पष्ट पिक्चर अपने ख्याल में आता है, तैसे विशेष जानने के प्रति उद्युक्त हो जाता है जीव, तो उसको ईहा ज्ञान कहते हैं। यानी वो निर्णय के प्रति जा रहा है। हाँ, वो सिर्फ वो तो संशय ज्ञान में था। हाँ, मगर ये संशय ज्ञान नहीं है, ये ज्ञान विशेष अधिक जानने की उत्सुकता है, वहाँ प्रयत्न है। नहीं तो कहेंगे यहाँ ज्ञान कहो या संशय ज्ञान कहो, एक ही, ऐसा नहीं है। ख्याल आता है ना, थोड़ा डिफरेंस है उसमें। अभी अवय में क्या होता है कि हमने ऐसा कुछ सफेद देखा, इसमें आकाश में कुछ सफेद ऐसा दिखा, तो ऐसा हुआ ये क्या है, ध्वजा है कि बगले की पंक्ति है। पहले ऐसा कुछ दिखा वो अवग्रह हुआ, और कुछ दिखा तो फिर हमने जरा उसमें फोकस लगाया, है ना, यानी अधिक जानने का प्रयत्न हुआ, ईहा हुई, तो उसमें सफेद है, कुछ फड़फड़ा रहा है, ऐसे आदि उसके अनेक विशेषताएं उसके ख्याल में आ गई हमारी। फिर उसमें निर्णय हमको पक्का करना था कि ये क्या है, तो हम उस पर सोचते नहीं, वो ज्ञान की वो पर्याय है आगे वाली, नहीं ये बगुले की पंक्ति ही है, ऐसा हम निश्चित कर लेते हैं, तो उसको कहते हैं, यानी विशेष उसके चिन्ह द्वारा निश्चित हो जाता है, निर्णय हो जाता है, नहीं ये बगुले की पंक्ति ही है, तो उसको कहेंगे अवाय है। और फिर और ज्ञान दृढ़ हो जाता है तो उसको कहते हैं धारणा। तो हम कभी कभी याद करते हैं, हम गए थे हिल स्टेशन पर, वहां ऐसा शाम का समय था, वहां वो बगुले की पंक्ति ऐसी देखी थी, कितनी बड़ी थी, कालांतर से भी याद आए, क्योंकि वो धारणा तक गया था ज्ञान, इसलिए वो याद आया। अभी वही अवाय तक होकर छूट गए तो याद नहीं आता। ऐसे तो हम कितने बार कितनी चीजें देखते हैं, मगर सभी चीजें हमारे अभी याद करने कहे तो कुछ नहीं याद है। जैसे 10वें साल में क्या किया था, 15वें के साल में क्या किया था, ये कुछ बातें ऐसी नहीं, मगर कुछ विशिष्ट घटनाएं हमारे मेमोरी में रहती है हमेशा, तो वो धारणा तक गई हुई है। संस्कार कह भी सकते हैं और नहीं भी कह सकते, दोनों बात ये आगे आएगी, क्या धारणा संस्कार है या नहीं है, ये अपना मोक्ष शास्त्र में उसके संबंध में बहुत चर्चा विस्तार से की है। नहीं, बिल्कुल नहीं, वो तो यहाँ में इसे जानने की इच्छा हुई, उसको संशय ज्ञान कहेंगे तो मिथ्या में चला जाएगा। संशय विपर्य और अनध्यवसाय मिथ्या ज्ञान के भेद है, और यहाँ हम प्रमाण के भेद देख रहे हैं। ये प्रमाण रूप मति ज्ञान की बात चल रही है, सम्यक मति ज्ञान की बात चल रही है, और यहाँ ये सम्यक मति ज्ञान का भेद बता रहे हैं। तो ये है कि ये है, ऐसा संशय नहीं है उसको, भले वो यानी निर्णय तक पहुँचना चाहता है, इसलिए उसकी विशेषताओं को गौर से देखता है। ये देखना है, दृष्टि की बात की इसलिए देखना, अब ये सब में लगाना, स्पर्श इंद्रिय द्वारा, रसने इंद्रिय द्वारा, ग्राण इंद्रिय द्वारा, जो कुछ जानने का कार्य होता है, सब में ये पहले अवग्रह होगा, फिर यहाँ, फिर अवाय, फिर धारणा। पांचों इंद्रिय और मनों के द्वारा भी जो जो कार्य चलता है उसमें इसी क्रम से ज्ञान होगा। मति ज्ञान की बात चल रही है, और ऐसा नहीं कि हर जो चीज जान रहे वो धारणा तक पहुंचे, कभी कभी अवग्रह होकर छूट जाता है। जैसे कुछ काटा किसी ने, तो हमारा ध्यान थोड़ा गया, फिर दूसरी जगह चला गया, तो अवग्रह होकर निकल गया, यानी वो क्या मच्छर काटा के दूसरा कुछ काटा, उसके उसका हमने उस तरफ नहीं ज्यादा अटेंशन दिया, क्योंकि उसके अधिक जानने के प्रति हम उद्युक्त तो नहीं हुए। ख्याल है ना, तो स्पर्शन इंद्रिय के बजाय हम अलग चक्षु इंद्रिय के विषय में चले गए, तो अन्य मति ज्ञान शुरू हो गया। वो स्पर्शन इंद्रिय वाला मति ज्ञान अवग्रह होकर ही निकल गया।
देखो यहाँ पर आपने जो प्रश्न पूछा है कि इह ज्ञान में क्या संशयात्मक ज्ञान होता है, तो बिल्कुल संशयात्मक नहीं होता है। ये मान लीजिए कि आप बगीचे में चल रहे हैं और आपके पैर को कुछ ऐसा मुलायम मुलायम सा लग गया, तो मुलायम सा लग गया तो आपको पहले तो ख्याल में आ गया कि कुछ तो लगा है, लेकिन क्या लगा है देखने के लिए आप झुक के देखते हैं तो वो घास है या कहीं मेंढक का कुछ और कुछ प्रकार है जो पैर के नीचे आया है, तो हम जानने के लिए उत्सुक हो रहे हैं या विशेष जानने की वहाँ प्रेरणा हो रही है,
चेष्टा,
हाँ, चेष्टा कहो प्रयत्न कहो, तो वो अधिक जानने की विशेष प्रकार से जानने की जो कोई उद्युक्तता है उसी को यहाँ इहा ज्ञान कहा गया है। वो संशयात्मक नहीं है, ये तो उदाहरण में समझा दे कि भाई ये है या ये है, ये जानने की जो उत्सुकता है या निर्णय करने का जो कोई प्रयत्न है उसको यहाँ इहा ज्ञान कहेंगे।
यानी निर्णय के पहले की अवस्था है ना, अभी निर्णय तक पहुंच दे तो उसको हम अवाय कहेंगे। तो पहले तो जाना तो कुछ है और फिर उसमें विशेष चिन्हों द्वारा, यानी कौन वो क्या है इसकी उत्सुकता हुई हमें जानने की, अधिक जानने की उस पदार्थ संबंध में, फिर हमने उसको जैसे हम फोकस लगाते हैं वैसे ये इहा ज्ञान में हो गया और बिल्कुल क्लियर पिक्चर हो गया क्या है, ख्याल में आ गया तो ये अवाय हो गया, निर्णय हुआ तो उसको अवाय कहेंगे। तो पहले हमने निमित्त में 6 देखे थे, 5 इंद्रिय और मन, और कर्म का भी निमित्त होता है। उसके बाद ये मति ज्ञान के भेद देखे थे, अवग्रह, इहा, अवाय और धारणा। तो ये इसमें अवग्रह, इहा, अवाय, धारणा में निमित्त कितने कितने अभी कर्मों का अलग रखेंगे, 5 इंद्रिय और मन। तो यदि इसको हम कॉम्बिनेशन रूप से देखेंगे तो अवग्रह, इहा, अवाय और धारणा, और उसमें ये 6 निमित्त हैं, 5 इंद्रिय और मन, तो सही चौक 24 इसके भेद होंगे। इतना ख्याल में आया, ये 24 भेद हो गए। अभी अवग्रह में 2 प्रकार होते हैं, एक होता है अर्थावग्रह और एक होता है व्यंजनावग्रह। यानी अर्थावग्रह व्यंजनावग्रह किसको कहना, तो ये जो 5 इंद्रिय और मन जिसमें निमित्त है तो उसमें तो अर्थावग्रह होता है, और व्यंजनावग्रह किसको कहना है, तो जो अव्यक्त ज्ञान होता है उसको व्यंजनावग्रह कहते हैं। यानी अवग्रह के पहले भी जो, यानी सबसे शुरू में जो व्यंजनावग्रह होता है, व्यंजनावग्रह ने ज्ञान व्यक्त होने के पहले अव्यक्त रूप से है, जैसे नया घड़ा माटी का लाया और उसमें कुछ बूंद गिर गए पानी के, फिर भी वो गीला नहीं दिखता है, बिल्कुल सूखा जैसा दिखता है, तो क्या बिल्कुल उस पानी ने कुछ नहीं काम किया, पानी का ग्रहण तो वहाँ भी हुआ है फिर भी वो व्यक्त नहीं है, और थोड़े बूंद डालिए तो वहाँ जरा गीला जैसा दिखता है तो वे व्यक्त हो गया। वैसे हम ग्रहण तो कर लेते हैं परंतु हमें ही वो व्यक्त रूप से नहीं हो रहा है, ग्रहण तो हुआ है परंतु वो व्यक्त नहीं हुआ है, तो उसको कहते हैं ये व्यंजन अवग्रह हुआ, और जब व्यक्त होने लगता है तो उसको हम अर्थावग्रह कहते हैं। उसी को, यानी अवग्रह में भी 2 भेद, सबसे शुरू में जो अव्यक्त रूप अवग्रह होता है उसको व्यंजनावग्रह कहते हैं, और जब वो व्यक्त हो जाता है तब उसको हम अर्थावग्रह कहते हैं। अब इसमें एक विशेषता है, आंखों द्वारा जो कुछ हम देखते वो व्यक्त ही होता है, उसमें अव्यक्त प्रकार होता ही नहीं है। आंखों के द्वारा, चक्षु इंद्रिय के द्वारा जो ज्ञान होता है वो व्यक्त, यानी वो अर्थावग्रह ही होता है, व्यंजनावग्रह नहीं होता। वैसे ही मन के द्वारा जो हम सोचते हैं उसमें भी डायरेक्ट हम सोच लेते हैं, उसमें पहले धुंधला था बाद में वो सोच हमारे ख्याल में आई, ऐसा नहीं है। तो ये व्यंजनावग्रह होता किसमें है, तो ये जो स्पर्शनेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय और कर्णेन्द्रिय द्वारा, क्या क्या जानते हम, स्पर्श को जानते हैं और किसको जानते हैं, रस को जानते हैं, वर्ण को, वर्ण ये तो आंखों का है, शब्द को जानते हैं, और गंध को जानते हैं। यानी ये जो चार इंद्रियों द्वारा जानते हैं, तो उसमें शुरू में अव्यक्त होता है, तो पहले में पहले व्यंजना वगैरह होता है और बाद में व्यक्त हो जाता है, उसको अर्थावग्रह कहते हैं। फिर से देखिए, जैसे मच्छर काटता है तो वो बहुत टाइम आकर काटता रहता है, पर जब हमारे ख्याल में आता है तब तक तो वो काट चुका होता है, ख्याल है ना। तो शुरू में वो अव्यक्त है तो उसको कहते हैं व्यंजना वगैरह। जब ख्याल में आने लगता है, अरे कुछ हो रहा है, फिर हमने गौर से देखा था, नहीं नहीं कुछ मच्छर काट, यानी कुछ काट रहा है, यानी बाद में वो यहाँ आगे चलेगा, परंतु वो अपने ख्याल में आने के पहले भी वहाँ कुछ न कुछ ग्रहण हुआ है, तो उसको कहते हैं व्यंजन अवग्रह। हर एक के बारे में समझना, शब्द भी, शब्द कान पर पड़ते तो है, परंतु वो उसमें से कुछ ख्याल नहीं आ रहे, कभी कभी बहुत टाइम तक वो पढ़ते रहते फिर अपने ख्याल में, नहीं कुछ सुनाई दे रहा है ना। कभी कभी हम बहुत, फिर हम कहते हैं जरा कान देखते हैं, देखकर सुनना तो सही, यानी वो उपयोग पूर्वक हम सुनते हैं, तो फिर वो क्या शब्द है, क्या कह रहे हैं, वो ख्याल में आता है, ऐसा होता है ना, बहुत है। टेस्ट करते समय भी ऐसे होता है, और फिर थोड़े थोड़े देर के बाद वो स्ट्राइक होता है कि नहीं नहीं है, तो हम सब्जी में काटते वो दोड़का वगैरह क्या कहते हो, तुरिया, तो मुँह में डालते वो कड़वा है कि नहीं ख्याल नहीं है, तो फिर थोड़ी देर के बाद अरे नहीं नहीं कुछ टेस्ट इसका अलग है, तो इसको कहते हैं व्यंजन अवग्रह और फिर अर्थावग्रह। तो व्यंजन अवग्रह में कितने इंद्रिया निमित्त है हमने देखे थे, और अर्थावग्रह में छह, क्योंकि व्यंजन अवग्रह के बाद अर्थावग्रह होता ही है, यानी जिसमें शुरू में चार में तो व्यंजन अवग्रह हुआ था, किसमें नहीं था व्यंजन अवग्रह, चक्षु और मन। तो व्यंजन अवग्रह में चार इंद्रिया निमित्त थी, जिसमें व्यंजन अवग्रह हुआ उसके पश्चात उसका अर्थावग्रह हुआ, तो अर्थावग्रह में आओ, ये तो चार तो हो ही है, और उसके आगे चलकर चक्षु और मन के द्वारा भी उसमें ले लेना, तो इसमें निमित्त भूत है छह, पांच इंद्रिया और मन, बराबर। अब इसमें जो हम अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा, ये चार चार भेद उसमें हमने को लगाने हैं, तो ये तो अकेला अवग्रह का भेद है, व्यंजनावग्रह अवग्रह का भेद है, और अर्थावग्रह होने के पश्चात वो ईहा अवाय धारणा होगी। यदि अवग्रह व्यंजनावग्रह होकर ही रुक जाए, आगे नहीं बढ़े, तो उसको ईहा अवाय धारणा नहीं होगी, यानी व्यंजन अवग्रह के बाद डायरेक्ट ईहा अवाय धारणा नहीं होती, ये मति ज्ञान के भेद चल रहे थे। तो व्यंजनावग्रह पहले चार इंद्रियों के द्वारा हुआ, उसके पश्चात उन्हीं चार इंद्रियों के द्वारा जो अर्थावग्रह हुआ, अर्थावग्रह में और दो जुड़े, चक्षु और मन, तो अर्थावग्रह छह के द्वारा होता, इसमें चार के द्वारा। अभी इसको हम बाद में फिर याद करेंगे, अभी तो ये जो अर्थावग्रह हमने क्या क्या बातें बताई, मति ज्ञान में पहले निमित्त बताए, निमित्त पांच इंद्रिय और मन बताया, उसके पश्चात मति ज्ञान के भेद बताए, अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा, अवग्रह में दो प्रकार बताए, व्यंजन अवग्रह और अर्थावग्रह। अब हम विषय में भेद करेंगे, किसको जान रहे हैं उसकी अपेक्षा से मति ज्ञान में भेद बताएंगे बाद में, हमें तो मति ज्ञान के 363 भेद, 336 भेद गिनाने हैं। तो विषय की अपेक्षा एक को जान रहा है कि अधिक को जान रहा है, इसकी अपेक्षा हम मति ज्ञान में भेद डालेंगे, एक को जानने वाला, अधिक को जानने वाला, ऐसा। अभी वो विषय में कितने प्रकार के भेद होते हैं उसकी अब यहाँ हम चर्चा करेंगे।
देखो, हम जानते तो है 336 प्रकार से, लेकिन वो 336 प्रकार जो है वो जानने के लिए हमें कंटाल आता है। हम जान तो रहे 336 प्रकार से, क्योंकि मति ज्ञान से ही शुरुआत होती है, किसी को डायरेक्ट श्रुत ज्ञान होता ही नहीं है, ख्याल में आया, लेकिन वो 336 बहुत आसान है, जब तक हम समझते नहीं तब तक हमको एकदम छाती में ऐसा एकदम बड़ा ये हो जाता है, कुछ नहीं है, ये हमारा ही कार्य, हम जान रहे कि हमने क्या क्या कर सकते हैं और करते हैं। हाँ जी आगे।
अब ये पदार्थों में जो प्रकार हो गए, जानने में जो अपने ज्ञेय आ रहे हैं, उसमें जो विविधता है उसकी अपेक्षा से हम ज्ञान के भेद बताएंगे। विषयों में जो प्रकार हो गए, अब वो कितने कितने प्रकार है, तो यहाँ तीसरी लाइन में लिखा है, मति ज्ञान का अपना प्रकरण चल रहा है, तो तीसरी लाइन में क्या लिखा है कि बहु, अभी पहले पढ़ते हैं, हर एक का हम अर्थ देखेंगे। बहु यानी अनेक, बहुविध यानी अनेक प्रकार, फिर क्षिप्र यानी शीघ्रता से, यानी जल्दी जल्दी जान लिया ऐसा, फिर अनिश्रुत, अनिश्रुत का अर्थ होता है कि एक ही भाग प्रकट है, बाकी अंदर डूबा हुआ है पानी में, उसकी हम देखेंगे, उसके उदाहरण सब देखेंगे। एक भाग ही देखा और उससे पूरे के हमने ज्ञान कर लिया, उसको हम कहेंगे अनिश्रुत। अनुक्त, उक्त ने कहा हुआ और अनुक्त ने नहीं कहा हुआ, यह हम खाली एक ही शब्द कहेंगे और वो एक अक्षर ही कहेंगे और अक्षर से पूरा शब्द हम जान लेंगे, ऐसा होता है ना कभी कभी। यह अनुक्त ने सामने वाला कुछ कहना चाहता है, अभी कहा नहीं है, परंतु उसके एक्सप्रेशन से हम तो वो तो बिना कहा हुआ भी जान लेते हैं, मुंह से बोला नहीं उसने कुछ भी, ऐसा होता है ना, बिना बोले हम उसकी तरफ देखते हैं या अन्य कुछ, यानी शब्द तो नहीं सुना है परंतु अन्य कुछ, या कुछ समझो अभी अंदर कुछ जल रहा है, सब्जी अंदर जल रही है, तो किसी ने बताया तो नहीं है, फिर वो गंध से हमने जान लिया, तो हमने अनुक्त को जान लिया है ना। हाँ, ये सब उसमें अनुक्त में बहुत प्रकार पड़ते हैं, तो बिना बताए हमने जान लिया, उसको कहते हैं अनुक्त। ध्रुव, अभी ध्रुव में ज्ञान बहुत काल तक दृढ़ वैसा का वैसा रहता है, उसको ध्रुव कहना। फिर एक, अब जो पहले हमने ये छह प्रकार देखे, कौन कौन से, बहु, बहुविध, आप कहना मेरे पीछे, बहु, बहुविध, फिर क्षिप्र, अनिश्रुत, अनुक्त और ध्रुव। ये अनुश्रित अनिश्रुत के पश्चात वहाँ कॉमा लगाना, क्या कहा, अनिश्रुत यानी एक भाग के ज्ञान से सर्व ज्ञान, सर्व का ज्ञान होना, एक ही भाग हमको दिख रहा है या ख्याल में आ रहा है और उसके पूरे पदार्थ का ज्ञान हम उस पर से कर लेते हैं, इसके उदाहरण हम देखेंगे बाद में। अब ये छह मूल बातें उन्होंने बताई, अब इसके अगेंस्ट, बहु के अगेंस्ट एक, बहुविध के अगेंस्ट एक विध, यानी एक यानी एक पदार्थ, एक विध यानी एक प्रकार का पदार्थ, कैसे, एक पदार्थ यानी हमने एक, इसको एक को जाना, और एक प्रकार के पदार्थ यानी गेहूं हमने जाना है, तो ये एक प्रकार का अनाज है। बहुविध में, बहुविध में कैसे लेंगे हम, वो चना भी है वहाँ, गेहूं भी है, चावल भी है, बहुत से ऐसे रखे हैं, अनेक प्रकार के धानों को हम जानते हैं, तो वो बहुविध में चला जाएगा, एक जाति को वो तो एक विध हो जाएगा। जैसे हमने बहुत सारी गाय है खड़ी हुई, उसको हमने देखा, वो बहु भी कह सकते हैं और एक जाति को इन्हें एक विध भी कह सकते, एक प्रकार की है, ख्याल है। बहु इन्हें संख्या बताते हैं, बहुविध इन्हें प्रकार बताते हैं, एक में भी एक संख्या आ गई और एक विध में एक प्रकार बताया जाता है। अक्षिप्र, क्षिप्र में हमने देखा था शीघ्रता से, और अक्षिप्र ने बहुत हल्के हल्के मंदता से, धीरे धीरे लंबे काल तक, लंबे काल तक धीरे धीरे जानते रहे ना, तो उसको कहते हैं अक्षिप्र। पहले हमने अनिश्रुत देखा था, एक छोटा भाग देखा था, पूरे वस्तु को हमने एक भाग से पूरे वस्तु का ज्ञान किया था। निश्रुत यानी पूरी वस्तु ही पूर्ण प्रकट है, तो उसको ज्ञान जान लिया हमने, तो उसको कहेंगे निश्रुत का ज्ञान हुआ। उक्त यानी जो बताए हुए चीज का ज्ञान हुआ, बताए हुए चीज का ज्ञान खाली कर्ण इंद्रियों के द्वारा ही होगा क्या, चक्षु इंद्रिय द्वारा भी होगा, कैसे होगा चक्षु इंद्रिय द्वारा, हाँ हो सकता है कि नहीं हो सकता? जैसे हमने डिस्क्रिप्शन किया किसी चीज के, कि हमने ऐसे ऐसे, अभी कोई चीज विशिष्ट है या आपको बताया कि रसोई घर में जाके विशिष्ट वो बर्तन लेके आना, तो आपको ऐसा प्रश्न चिन्ह देखकर मैंने उसका हुलिया बताया, ये ऐसा है वैसा है वैसा है, या किसी भी इवन किसी व्यक्ति के संबंध में हमने उसका डिस्क्रिप्शन बताया और बताने के बाद वो सामने आता है तो वो बिल्कुल हमको, हमने जान लिया नहीं यही वो व्यक्ति है। या घर का वर्णन किया, हमें फोन आते हैं बहुत सारे कि आपको घर में आना है, आपके घर में कैसा पहचानना, तो हम बताते हो साइंस सर्कल से आना, सातवीं बिल्डिंग है, वो पिंक कलर का है, उसमें ऐसा लिखा है, ऊपर चले आना, नौ नंबर का है, ये हमने उक्त किया और यहाँ आके वो वैसा देखा और उसने पहचान लिया, तो उसको कहेंगे वो उक्त का ज्ञान। हाँ नहीं, सब में हो जाएगा ये, उक्त का भी सब में चला जाएगा। पहले डिस्क्राइब किया है, जैसे ये संगीत का कोई विशिष्ट राग है तो उसका डिस्क्रिप्शन बता दिया और फिर वो राग सुनने पर वो ख्याल आया, नहीं नहीं ये वो राग है जिसका हमने वर्णन सुना था, ये सब में चला जाएगा। तो ये उक्त हो गया। अध्रुव, अध्रुव का अर्थ होता है वो हीनाधिक होते जाता है, क्षण क्षण में वो ज्ञान हीनाधिक होता है। ध्रुव में हमने देखा था वैसा कि वैसा लंबे काल तक चलता रहता है और अध्रुव में वो ज्ञान हीनाधिक होता है, तो उसको अध्रुव कहते हैं। तो अभी हम 12 के 12 फिर याद करेंगे। अब बहु और एक ऐसा देखेंगे, जोड़ी जोड़ी लगाएंगे। तो पहले हमने, अभी जोड़ी का नाम मैं बताऊंगी, आप फिर रिपीट करना। बहु और एक, बहुविध एक विध, क्षिप्र अक्षिप्र, अनिसृत निसृत, अनुक्त उक्त, ध्रुव अध्रुव, ख्याल है ना? अभी अनिसृत का उदाहरण जैसे है कि बड़ा जलाशय है और उसमें हमको खाली एक सूंड ऊपर दिख रही है, हमने सूंड को देखा तो हमने क्या जान लिया, अंदर हाथी बैठा हुआ है। हमने एक अवयव देखा उसका और उसके द्वारा हमको पूरा ख्याल आया कि वो अंदर हाथी है। जैसे वो समुद्र में होता है शार्क का, खाली वो ऊपर का ऐसा तिरछा वो दिखता है, उसका यानी क्या टेल का एंड ऐसा, और वो क्या ख्याल में आता है ये शार्क है। तो एक अवयव देखकर पूरे का ज्ञान कर लेना, तो इसको कहते हैं अनिसृत के द्वारा, यानी अनिसृत पदार्थ है, पूरा व्यक्त नहीं है, थोड़ा दिख रहा है और थोड़े से ही हम पूरे का अनुमान वहां लगा देते हैं। तो ये मति ज्ञान के, यानी विषयों के द्वारा मति ज्ञान में ये 12 प्रकार के भेद होंगे, यानी 12 ही प्रकारों का अवग्रह होना, 12 ही प्रकारों के इहा होना, 12 ही प्रकारों के अवाय होना, 12 ही प्रकारों के धारा होना। तो इसमें कितने भेद हो जाएंगे, 48 हो जाएंगे। अब हर एक में अवग्रह या अवाय धारणा में हमने 6-6 देखे थे, 5 इंद्रिय और मन निमित्त। तो अभी जो हमने पहले भेद देखे थे उसमें ये लगाएंगे। पहले में पहले हमने देखा था व्यंजनावग्रह के 4 भेद देखे थे, तो ये 12 ही प्रकार के पदार्थों का व्यंजनावग्रह होगा, तो उसके कितने 48 भेद हो जाएंगे। इसके आगे तो अवाह धारणा उसकी होती नहीं है, व्यंजनाग्रह के बाद अर्थावग्रह शुरू हो जाता है। व्यंजनावग्रह में हमने 4 ही इंद्रियों को लिया था, अर्थावग्रह में 6 लेना है। अभी 6 × अवग्रह यहाँ अवाय धारणा, इसमें 4 है। इसमें तो अकेले 4 ही थे, अकेला व्यंजनावग्रह ही था, उसमें यहाँ अवाय धारणा नहीं थे, इसलिए 4 × 12 डायरेक्ट किए थे। अब यहाँ जो 6 है उसमें अवग्रह यहाँ अवाय धारणा लेना, तो पहले 4 से गुणा करना, 6 × 24 हुए, और उसमें 12 प्रकार के पदार्थ हैं। ये पदार्थों की विषय के अच्छा 12 भेद होते हैं, तो इसके कितने हो गए, आप जरा हिसाब लगाना इसका, 288। ये 288 और पहले के 48 कितने हुए, 336 भेद हो गए। ये मति ज्ञान के 336 भेद है। ख्याल है? पहले हमने क्या किया, व्यंजनावग्रह देखा। व्यंजनावग्रह में कौन कौन सी इंद्रिया निमित्त होगी आप बोलना, पीना। किसको छोड़ा था हमने? चक्षु और मन को छोड़ा था। रहे कौन से मंजू बेन? स्पर्शन इंद्रिय, रसना इंद्रिय, ग्रहण इंद्रिय और कर्ण इंद्रिय। ये चार इंद्रिया रही। चार इंद्रियों के द्वारा व्यंजनाग्रह होता है पहले, परंतु वो 12 ही पदार्थों के संबंध में होता है। तो उसके भेद कितने हो गए व्यंजनावग्रह के? 48 भेद हो गए। व्यंजनावग्रह यहीं तक रुक गया। व्यंजनावग्रह के बाद उन्हीं का अर्थावग्रह होगा, परंतु अर्थावग्रह में कितने इंद्रिय और मन, कितने सारे निमित्त है? 6 निमित्त है। और उसमें भेद कितने हो गए? मति ज्ञान के भेद कितने हो गए? कौन से चार? अवग्रह, इहा, अवाय और धारणा। बराबर। तो कितने भेद हुए? 6 × 4 24 भेद हुए। अब इसमें कितने प्रकार के पदार्थों को जान रहा है? हाँ, पदार्थों में हमने कितने भेद किए थे? 12। तो अभी 24 × 12 288 भेद हो गए। पहले हमने व्यंजनावग्रह के अकेले के भेद निकाले थे 48। अभी अवग्रह या अवाय धारणा के मिलकर भेद निकाले 288। तो टोटल 336 भेद हो गए। तो इसको कहते हैं मति ज्ञान के 336 भेद है। उसमें ज्ञान के भेद लिए, निमित्त में इंद्रिया और मन उसके भेद लिए, और फिर जो जानने में आते पदार्थ उसके भेद लिए, और इन सबके कॉम्बिनेशन परम्यूटेशंस किए। तो अलग अलग कॉम्बिनेशन हम लेंगे तो उसमें इतने भेद हो सकते हैं। ख्याल है ना? पदार्थों के भेद, ज्ञान के भेद और निमित्तों के भेद, इसके अपेक्षा से मति ज्ञान के 336 भेद हमने देखे। इसमें कोई प्रश्न है? एक साथ में एक प्रकार होगा। ये कॉम्बिनेशंस है ना। देखो, जब अवग्रह ज्ञान चल रहा है तब यहा है क्या? एक एक के पूर्व की एक अवग्रह हुआ, उसके बाद इहा होगा, उसके पश्चात अवाय होगा, उसके पश्चात धारणा। और एक इंद्रिय के द्वारा एट ए टाइम एक ही इंद्रिय के द्वारा जानता है जीव। उपयोग जो है, हम भले पंचेंद्रिय जीव है, परंतु उपयोग एक समय में किसी एक के द्वारा जानने में लगता है। जैसे आपके टीवी पर कितने चैनल है केबल में? हाँ, नहीं गिन सकते। अच्छा, मगर आप वो रिमोट लेके बैठते हैं, हाँ, और बार 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 घुमाते रहते हैं, मगर कितने चैनल एट ए टाइम देखते हो? एक ही चैनल दिखता है ना। वैसे एक सूक्ष्म ज्ञानी की ये लिमिटेशंस है। भले 5 इंद्रिय वाला जीव है, परंतु एट ए टाइम उसका उपयोग एक इंद्रिय के द्वारा जानने में ही उद्युक्त होगा। आया हो नहीं आया हो तो भी क्रम से होगा।
देखो, आप अगर स्पर्शन इंद्रिय को जान रहे हैं तो स्पर्शन इंद्रिय के ज्ञान में ये चारों प्रकार होंगे धारणा तक के, और वो बात ध्यान में रहेगी। जैसा अभी हम थोड़ा सा बहुत क्रूड एग्जांपल है, लेकिन मैं बताता हूँ। कोई भी पति है, अपने पत्नी का प्रथम हाथ पकड़ता है, स्पर्श करता है, और उसको 50 साल बाद भी याद आता है कि अरे मैंने उसके ऐसे ऐसे किया था करके। ख्याल में, ये स्पर्शन इंद्रिय की धारणा है। आपने कोई परफ्यूम लगाया है और वो स्टाइल निकल गई, 50 साल के बाद वो परफ्यूम फिर से आपको अवेलेबल हो गया, तो अरे मैंने शादी में यही परफ्यूम लगाया था, तो वो उस इंद्रिय का विषय और उसकी धारणा।
यानी जब आपका स्पर्शन इंद्रिय के द्वारा जान रहे हैं, यदि वो धारणा तक पहुंचने के पहले ही आपका उपयोग पलट गया, अन्य इंद्रियों के द्वारा जानने में लग गया, तो वो धारणा तक नहीं गया है क्या?
जैसा हम देखते हैं, देखो, आपको अपना सपना सब,
आपका प्रश्न ऐसा ही था। हाँ, आप क्या कहते? हाँ, जरूरी नहीं है अवग्रह होकर भी छूट जाए।
देखो, आप तो बहुत बार सपने भी देखते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि अरे मैंने सपना तो देखा था लेकिन क्या देखा था याद नहीं आता है, कभी कभी पार्शली याद आता है कि ऐसा ऐसा देखा था, और कभी तो क्या होता है कि पूरा ध्यान में रहता है, और कभी कितने साल के बाद भी अरे मैंने ऐसा सपना देखा था, ये चारों ही प्रकार हो सकते हैं।
और वो ज्ञान अपना पलटता रहता है, उपयोग पलटता रहता है। हमें तो लगता है हम पांचों इंद्रियों के द्वारा एक साथ जान रहे, लगता तो ऐसा है हमको, जैसे हम यहाँ खा भी रहे, क्रिकेट की मैच भी देख रहे, ऊपर के पंखे की हवा भी ले रहे, और ऐसे क्या लगता है पांचों इंद्रियों को एक साथ हम भोग रहे हैं उनको विषयों को, परंतु ऐसा नहीं होता। एट अ टाइम उपयोग एक ही जगह लगेगा, वो बहुत जल्दी जल्दी घूमता है, तो हमें ऐसा क्या लगता है कि हम सबको एक साथ जान रहे हैं। और एक इंद्रियों के द्वारा जो कुछ जानने में आ रहा है, यदि हमारे वो भले अवग्रह होकर चला जाए तो हम ख्याल में भी नहीं आए कि आपने जाना था। अभी हमने देखा था ना व्यंजन अवग्रह वाली बात, अंतर मुहूर्त तक उसको जानेंगे लगातार, तो ये अवग्रह या अवय धारणा, ये भले धारणा तक नहीं जाए पर उसका निर्णय क्या हुआ था या क्या हमने जाना, ये ख्याल में आते आते उसके लिए एक अंतर मुहूर्त लगेगा, और फिर हमारा उपयोग दूसरे इंद्रियों के द्वारा पलटेगा। यानी वो अंतर मुहूर्त भी कितना छोटा होगा कि इतना जल्दी जल्दी हम पांचों इंद्रियों द्वारा हम कुछ न कुछ जानते रहते हैं, तो हर एक जो जो हमारे ख्याल में आ गया है उसके लिए एक अंतर्मुहूर्त काल लगा है, वहां एक समय में ही जान रहे। अभी हमने देखा मति ज्ञान अवग्रह या अवय उसमें भी कुछ न कुछ समय लगता है, लगातार उसको जानते रहे तो वो वस्तु ख्याल में आती है। ये तो क्षोभशम की पराधीनता कहो या हीनता कहो या उसकी अल्पन्यता कहो, ये बात है। केवल ज्ञानी एक समय में सब कुछ जानते हैं, तीनों काल का ज्ञान और सभी पदार्थों का, स्व का, पर का, सबका, अनंत गुणों का, उसके पर्यायों का, उसके अविभाग प्रतिच्छेदों का, जो कुछ है, जो आपस का रिलेशन है, जो कुछ सबका, तो ये केवल ज्ञानी है। वो क्षिप्र अक्षिप्र में आए गए ना, वो ये हम देखते हैं ना टीवी पर कंपटीशन चलते हैं, वो प्रश्न पूछते कोई फटक दब दब, यानी उसको प्रश्न भी सुनता है, उसको विचार भी हो जाता है और उसका निर्णय भी हो जाता है और वो बटन दबाता है, और हम तो अभी वो प्रश्न क्या है सोचते रहते हैं ना, ऐसा होता है उसमें। ये मति ज्ञान के भेद है, और उसमें विशिष्ट अभी ऐसा है ना, किसी विशिष्ट विषय में अपनी बुद्धि बहुत चलती है और अन्य विषय में नहीं चलती है। अभी शास्त्र में अपनी बुद्धि चलेगी और दुनियादारी की पूछो तो हम उसमें बुद्ध ठहरेंगे, तो ये विशिष्ट विषय में अपना क्षक्षम भले चले तो उससे कुछ नहीं है। और अभी देखा वो अध्रुव, क्योंकि निमित्त रूप से मति ज्ञानावरण का क्षोभशम भी है, अभी ज्ञानावरण में यानी उसमें वैसी पराधीनता भी चलती रहती है, वीर्यांतराय और मति ज्ञानावरण के क्षोभशम में उसके कारण ज्ञान नहीं होता है, फिर भी जीव में ऐसे जो कुछ वेरिएशंस होते हैं, हम कहते हैं बहुत इंटेलिजेंट हो और बुढ़ापे में तो ऐसा वो क्या एमनेशिया वगैरह हो जाता है, ऐसी बीमारी हो जाती है कि अभी दो मिनट पहले क्या बोला, क्या खाया, क्या किया, मैं कहाँ से आया हूँ, कुछ नहीं याद रहता, ये हो जाते इसका कुछ अभिमान करने जैसा है नहीं। खुद कहते हैं ना वो गजाबेन कारंजा वाली है, तो ये सब धवला वगैरह पूरा करना ने फूलचंद जी शास्त्री से पढ़ा था, और ऐसा पढ़ा था कि 14 साल में पढ़ी थी उन्होंने, और उन्हें प्रश्न पूछे उल्टे, ऐसे उतनी बुद्धि थी, वो खुद कहती है। और अभी ऐसे कि मुझे कुछ नहीं याद आता है ऐसा कहती वो, अभी तो मोर देन 90 होगी वो भूल जाता, हाँ बुलाते है वो वहाँ भी, आओ आप करना नहीं हो कि अभी पढ़ेंगे हम साथ में, ऐसे है उसकी क्या है। तो ये तो हमने मति ज्ञान के भेद निमित्तों की अपेक्षा नहीं, इंद्रियों मन की अपेक्षा से, मति ज्ञान के भेदों की अपेक्षा से, और जो जानने में आ रहे पदार्थ उसकी अपेक्षा से इसके कॉम्बिनेशंस जो देखे थे वो 336 भेद देखे उसके मति ज्ञान के। इसको फिर पढ़ते हैं पैराग्राफ, ख्याल में आएगा आपको। उनमें पांच इंद्रिया और मन के निमित्त से तथा मति ज्ञानावरण कर्म के क्षोभशम से पैदा हुआ, लिखा तो है पैदा हुआ, परंतु ज्ञान तो जीव से पैदा होता है, ये सामने कर्म का निमित्त है इसलिए उससे पैदा हुआ, ऐसा कहने में कोई दोष नहीं है, परंतु यदि हम ऐसा ही मानेंगे तो ये तो हमारा नुकसान है। अवग्रह इहा माया और धारणा रूप तथा शब्द स्पर्श रस रूप गंध और दृष्ट श्रुत तथा अनुभूत पदार्थ को विषय करने वाला, यह मन को लेना था ना, इसलिए आगे दृष्ट श्रुत अनुभूत भी लिया, और बहुविध क्षिप्र अनिश्रुत अनुक्त ध्रुव, एक एक विध अक्षिप्र निश्रुत उक्त अध्रुव के भेद से, ये विषयों के भेद हुए 12। 336 भेद रूप आभिबोधिक मति ज्ञान होता है, ये ख्याल में आए सबको। मति ज्ञान को ही आभिनिबोधिक कहते, अब श्रुत ज्ञान की वो परिभाषा बताएंगे, श्रुत भाव प्रमाण बताइए, प्रमाण के भेद पांच बताए उन्होंने, कौन से भाव प्रमाण के पांच भेद बताए, कौन कहेगा? हाँ, आपकी बौद्धिक भाव प्रमाण कहा उन्होंने, हाँ हाँ, श्रुत भाव प्रमाण, अवधि भाव प्रमाण, मन पर्याय भाव प्रमाण, केवल भाव प्रमाण, हाँ। ज्ञान हम लगाते हैं उसके बदले यहाँ भाव प्रमाण शब्द लगाना, ये प्रमाण के पांच भेद हम देख रहे हैं। अब श्रुत भाव प्रमाण की बात करेंगे, जिस ज्ञान में मति ज्ञान कारण पड़ता है, ये बात तो अभी श्रुत ज्ञान की चल रही है, तो श्रुत ज्ञान में कारण कौन है? तो मति ज्ञान, यानी बिना मति ज्ञान के आगे श्रुत ज्ञान नहीं होगा। तो जिस ज्ञान में मति ज्ञान कारण पड़ता है और जो मति ज्ञान से ग्रहण किए पदार्थ को छोड़कर, पहले क्या किया, मति ज्ञान के द्वारा जाना पदार्थ को, फिर उस पदार्थ को छोड़ा और क्या किया, तत्संबंधित दूसरे पदार्थ में व्यापार करता है। आप नहीं समझे, मैंने कहा शक्कर, तो आपने कौन सा मति ज्ञान किया? मति ज्ञान हुआ ना, शक्कर शब्द सुना आपने, सुना तो कौन से इंद्रिय द्वारा सुना? कर्णेन्द्रिय द्वारा सुना, कर्णेन्द्रिय द्वारा शक्कर यह शब्द सुना, तो आपके ज्ञान का विषय क्या था? शब्द था, शब्द नाम, यानी शब्द को आपने ग्रहण किया, अब शब्द को छोड़ दिया, और तत्संबंधी जो दूसरा पदार्थ जो डब्बे में रखी हुई शक्कर है, शक्कर शक्कर पदार्थ, पहले तो नाम को सुना, अब वो नाम छोड़ दिया और उसके द्वारा वो पदार्थ को ग्रहण किया, वो पदार्थ को जानने लगे। अब ख्याल है ये क्या कहना चाहते हैं? मति ज्ञान के द्वारा शब्द सुना, अब शब्द का लक्ष्य छोड़ा और शब्द जिसका वाचक है उस पदार्थ को पकड़ा, तो मति ज्ञान के द्वारा ग्रहण कर किए हुए पदार्थ को छोड़कर उस संबंधी दूसरे पदार्थ को जानने लगे, तो आप ये शक्कर को जानने लगे, शक्कर शब्द सुनकर शक्कर पदार्थ को जानने लगे, तो हम उसको कहेंगे क्या कहते हैं, तत्संबंधी दूसरे पदार्थ में व्यापार करता है, व्यापार करता है ने शक्कर का व्यापार करता है, यानी क्या जानता है। ये व्यापार उपयोग द्वारा होता है, ख्याल है ना, जिसमें अपना उपयोग लगता है तो उसको कहते हैं वो व्यापार हो रहा है, ज्ञान का व्यापार होना यानी जानना, उसकी क्रिया चलना उसमें। और शुद्ध ज्ञानावरण कर्म के क्षोभशम से, आभिनिबोधिक ज्ञान में कौन सा ज्ञानावरण लिया था अशोक भाई? मति ज्ञान हुआ तो उसमें कौन सा ज्ञानावरण कर्म लिया था हमने? हाँ, मति ज्ञान जब हुआ था उसमें कौन सा कर्म निमित्त लिया था? मति ज्ञानावरण का क्षोभशम। अब शुद्ध ज्ञान की बात में उसमें कौन सा लिया ज्ञान? शुद्ध ज्ञानावरण का क्षोभशम, ख्याल में आए? तो श्रुत ज्ञान आवरण कर्म के क्षोभ श्रम से उत्पन्न होता है उसे श्रुत ज्ञान कहते हैं। यानी जीव स्वयं श्रुत ज्ञान उत्पन्न करता है अपनी योग्यता से, तब वहाँ सामने श्रुत ज्ञान आवरण कर्म का क्षोभ श्रम पाया जाता है। ऐसा सहज ही निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। अरे मगर वहाँ श्रुत ज्ञान आवरण का क्षोभ श्रम चल रहा है और यहाँ मति ज्ञान हो तो ऐसा नहीं होता। ये सहज जो चलती है बातें, तो इसने किसी ने वशीला लगाया और ऐसा ये वहां चलता नहीं है। क्या कहते हैं कि इसमें अभी क्या निश्चित हुआ, श्रुत ज्ञान जो है उसके पहले क्या होगा, मति ज्ञान। बीच में दर्शन होगा कि नहीं होगा, श्रुत ज्ञान दर्शन पूर्वक होगा कि नहीं होगा। मति ज्ञान के पहले दर्शन हुआ था। अभी जब शब्द सुने तो दर्शन पूर्वक ज्ञान हुआ था, शब्द का ज्ञान हुआ। अब शब्द मति ज्ञान पूर्वक श्रुत ज्ञान हुआ, वो बीच में फिर दोबारा दर्शन नहीं होगा उसको। दर्शन का कार्य जो है ना, वो दर्शन यानी वो श्रद्धा वाला दर्शन नहीं लेना, यहाँ ज्ञान दर्शन वाला दर्शन लेना। हाँ भाई, मेरा ऐसा प्रश्न है, शक्कर शब्द सुनने के पहले कौन सा दर्शन हुआ था? अचक्षु दर्शन। बहुत अच्छा। देखो, चक्षु इंद्रिय के द्वारा जो ज्ञान होता है, आपने पेंसिल देखी, इसके पहले कौन सा दर्शन हुआ? चक्षु दर्शन। आपने शब्द सुना, उसके पहले कौन सा दर्शन हुआ? अचक्षु दर्शन। ख्याल है? चक्षु इंद्रिय के अलावा अन्य जो इंद्रिया है उससे पहले कौन सा दर्शन होगा? तो अचक्षु दर्शन होगा। और चक्षु इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान होता है उसके पहले कौन सा दर्शन होता है? तो चक्षु दर्शन होता है। अवधि ज्ञान के पहले कौन सा दर्शन होता है? अवधि दर्शन होता है। अब मेरा प्रश्न ध्यान से सुनो, केवल ज्ञान के पहले कौन सा दर्शन होता है? प्रेरणा बहन कहती है कि उसके पहले कुछ नहीं होता साथ में, और आप कहते पहले दर्शन होता है, केवल दर्शन। प्रश्न मेरा उसी लिए था, केवल ज्ञान के पहले अगर दर्शन कहे तो वो परिपूर्ण ज्ञान नहीं, उसको रुकना पड़ा ना, जब तक दर्शन नहीं हुआ तब तक ज्ञान को रुकना पड़ा। केवल दर्शन और केवल ज्ञान दोनों युगपत एक साथ बिना क्रम के होते हैं, उसमें क्रम नहीं पड़ता। क्या लाए? और मनोपर्य ज्ञान के पहले, मनोपर्य ज्ञान के पहले मनोपर्य दर्शन कोई होता होगा? हाँ, तो उसको भी अचक्षु दर्शन में चले ले, क्योंकि उसमें पहले भी मति ज्ञान चलता है ना, वो मन संबंधी वो चलता है, मन के द्वारा वो उसमें पहले निमित्त रूप मन पड़ता है, तो वो अचक्षु दर्शन में ले लेते हैं उसको भी। ये तो ऐसे बीच में विषय निकला। देखो, ये चक्षु, ये श्रुत ज्ञान की यहाँ तो इतनी बात बताई, उसके डिटेल्स आगे चल के बताने वाले। कौन से? हाँ, दूसरा पदार्थ मति ज्ञान से जाना हुआ होना चाहिए, ऐसा इनका प्रश्न है। क्या कहा कि शक्कर हमने शब्द सुना तो शक्कर पदार्थ को जानते हैं, तो वो पदार्थ जाना हुआ होना चाहिए, ऐसा इनका प्रश्न है। बराबर ऐसा। हाँ, शक्कर संबंधी, शक्कर शब्द दूसरा पदार्थ नहीं। आप शक्कर शब्द सुना और आप अपने बच्चे के बारे में जान रहे दूसरे मन के द्वारा, वो दूसरा मति ज्ञान शुरू हुआ, वो श्रुत ज्ञान नहीं कहेंगे उसको। तत्संबंधी लिखा ना, तत्संबंधी दूसरा पदार्थ, कोई भी अन्य पदार्थ नहीं। यदि हम अन्य पदार्थ को जानने लगे तो हम कहेंगे ये मन के द्वारा अन्य मति ज्ञान चालू हो गया। सुना तो शक्कर और मन के द्वारा अन्य विकल्प कहीं दूसरे पदार्थ में अपना मन जुड़ गया, तो हम कहेंगे वो मन संबंधी मति ज्ञान ही चल रही, शुद्ध ज्ञान नहीं कहेंगे उसको।
यहाँ पदार्थ का अर्थ कोई दूसरी वस्तु ध्यान में लेना ऐसा नहीं, तत्संबंधी जो भी आपका ज्ञान चलेगा, यानी मान लीजिए आपने शक्कर सुना तो वो बहुत मीठी होती है, मेजन नहीं खानी है, वगैरह वगैरह जो
ये
भी
शक्कर पदार्थ ख्याल में आना,
और शक्कर का भाव ये है, ये जो कुछ है वो तत्संबंधी पदार्थ पदार्थ, यानी ऐसा हमने शक्कर को सुना
ऐसा उनको नहीं पूछना है। शक्कर पहले जानी होनी चाहिए ऐसा भी नहीं है। वेगड़ा पदार्थ है नहीं, शब्द एक पदार्थ है और शक्कर दूसरा पदार्थ है। शक्कर ये जो ध्वनि निकली ये शब्द पदार्थ है, और एक्चुअल जो शक्कर है जो आपके ज्ञान में आ रही है, भले सामने हो या नहीं हो उसकी बात नहीं है, वो अन्य पदार्थ है, अन्य द्रव्य ही है। शब्द एक अन्य द्रव्य है, भाषा वर्गना से बना हुआ है, और वो शक्कर पदार्थ है, वो आहार वर्गना है। तो ये अन्य पदार्थ आपके ख्याल में आए, अन्य वस्तु है वो, ख्याल है, अन्य चीज आपके ध्यान में आ गई है। तो ये केवल श्रुत ज्ञान सुनने में ही लगेगा कि नहीं लगेगा, क्या लगता है आपको? ये श्रुत ज्ञान यानी अभी हमने शब्द सुना और बाद में हमको अन्य चीज का ज्ञान हुआ, तो पंचेंद्रियों को ही श्रुत ज्ञान होगा ऐसा होगा? फिर जिसको कर्णेंद्रिय है उसको ही श्रुत ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि वे तो शब्द सुनेंगे। हाँ बिल्कुल, हाँ एक इंद्रियों से लेकर सबको मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान दोनों है, तो वो तो सुनते नहीं है, तो एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ का ज्ञान कैसे होता होगा? एक इंद्रियों में एक स्पर्श ज्ञान ही है, हाँ स्पर्श इंद्रिय से जाना किसी पदार्थ को, तो क्या होगा? देखो देखो, अब ये वनस्पति है, सुबह धूप आती है तो उसने स्पर्श इंद्रिय के द्वारा धूप को देखा, जाना, क्या जाना? उष्णता उसकी जो कुछ वो जानी उसने, तो ये मुझे हितकर है ऐसा उसको जो ज्ञान हुआ वो उसका श्रुत ज्ञान होगा। हम देखते वो कोई पेड़ होते ना ऐसे हाथ लगाते मुड़ जाए मिट जाते, मराठी में उसको लाजाड़ू कहते, हिंदी में चुईमुई, हाँ तो चुईमुई को उसको ऐसा ही स्पर्श हुआ, तो ये मुझे कुछ संकट लगता है, तो उसकी जो कुछ हुआ और यानी वो रिएक्शन से हम समझते कि जीव यानी पेड़ के जीव ने जाना है इसको, है ना, वो मिटा कि नहीं मिटा उसकी बात नहीं है, तो उससे क्या ख्याल है कि ये स्पर्श उसको कुछ हुआ और उससे ये मुझे कुछ अहित कर लगता है, ये उसको ज्ञान हुआ ना वहाँ, तो वो उसका श्रुत ज्ञान है। कीड़ी चलती है और हम उसको ऐसे बीच में ही हमें लगता है पैर के नीचे नहीं आया, हम कागज पर उठाना चाहते हैं, तो उससे वो डर जाती है और अन्यत्र चली जाती है, तो ये अपने कुछ धोखा है अपने लिए, ये उसको ख्याल में आता है, ये उसका श्रुत ज्ञान है। तो एक इंद्रियों में भी श्रुत ज्ञान है, मति श्रुत ज्ञान तो सब जीवों में है, जो जो 12वें गुणस्थान तक के है उनमें मति श्रुत ज्ञान दोनों ही ज्ञान होते ही है। इन एडिशन किसी को अवधि मनोपर्य हो उसकी बात अलग, वो भी कहाँ होती है उसकी बात आएगी अभी। यहाँ तक समझे श्रुत ज्ञान की बात? अब ये श्रुत ज्ञान के और जो कुछ भेद हो गए द्रव्य श्रुत के, वो आगे चलकर बता देंगे वो। अब यहाँ आगे हम चलते हैं, द्रव्य क्षेत्र काल और भाव के विकल्प से, ये विकल्प कौन करता है? भेद, विकल्प का अर्थ होता है भेद, विकल्प के बहुत अर्थ होते हैं, ये जो मन में हम विचार करते हैं उसको भी विकल्प, हमें ऐसा विकल्प आया उसके लिए भी हम कहते हैं विचार आया के लिए भी विकल्प कहते हैं, और विकल्प यानी भेद। विकल्प का अर्थ होता है ऑप्शन, इसके लिए क्या विकल्प है यानी दूसरा अल्टरनेटिव क्या है इसके लिए, ऐसा हम पूछ दें ना, ये ऐसी ऐसी परिस्थिति है इसमें दूसरा विकल्प क्या है यानी उसमें दूसरा ऑप्शन क्या है इसके लिए, हम कोई रास्ता ढूंढ रहे तो दूसरा ऑप्शन क्या है, उसके लिए भी विकल्प कहते हैं। विकल्प के ऐसे अलग अलग अर्थ होते हैं शास्त्र में, तो जहाँ जो अर्थ है उसको ही समझना है हमें। क्या यहाँ क्या अर्थ है? द्रव्य क्षेत्र काल और भाव के भेद से अनेक प्रकार के पुद्गल द्रव्य को, यानी पुद्गल द्रव्य को द्रव्य यानी उनकी संख्या, क्षेत्र यानी उनका आकार, काल यानी कभी पूर्व का या बाद का, और भाव यानी पुद्गल द्रव्य में जो गुण है उसके, उसके जो स्पर्श रस गंध वर्ण आदि है वे उसके भाव है, तो उस अनेक प्रकार जो उसमें पड़ते हैं, तो अनेक प्रकार के पुद्गल द्रव्य को जो प्रत्यक्ष जानता है उसे अवधि ज्ञान कहते हैं। शाम को ये बात चली थी बहुत, केवल ज्ञान को कहते हैं सकल प्रत्यक्ष, संपूर्ण प्रत्यक्ष, यानी स्पष्ट रीति से जानता है किसको, सभी पदार्थों को जानता है, उसको सकल प्रत्यक्ष कहते हैं। और अवधि ज्ञान में मर्यादा है, सभी पदार्थों को नहीं जानता है, मात्र पुद्गल को जानता है, और पुद्गल में भी अवधि ज्ञान के जितने हीनाधिकता होगी जगने से उत्कृष्ट, तो उसमें भी लिमिटेशंस होगी, कितने पुद्गलों को जानेगा, कितने काल तक के पुद्गलों को जानेगा। तो ये सकल प्रत्यक्ष नहीं है, उसको एक देश प्रत्यक्ष कहते हैं या विकल प्रत्यक्ष भी कहते हैं। ऐसा भी कह सकते कि संपूर्ण असंख्यात आत्म प्रदेशों के द्वारा संपूर्ण पदार्थों को स्पष्ट प्रत्यक्ष ज्ञान जो होता है उसे केवल ज्ञान कहते हैं। और अवधि ज्ञान और मन परे ज्ञान, जैसे अभी आँखों का जो है भावी इंद्रियोज्ञान में क्या होता है, यहाँ के जो विशिष्ट आत्म प्रदेश है भावेन्द्रिया, उनके द्वारा ग्रहण होता है ना, वर्ण का ग्रहण वहाँ के प्रदेशों से होता है, घ्राण यानी गंध का ग्रहण ये नाक में जो कुछ है वहाँ विशिष्ट उतने आत्म प्रदेशों के द्वारा होता है, हर एक में ऐसा लेना, हर एक इंद्रिय में। ऐसे अवधि ज्ञान के लिए भी विशिष्ट आत्म प्रदेशों के द्वारा, ये सु अवधि है वो तो नाभि के ऊपर के और को अवधि में नाभि के नीचे कुछ ऐसे आत्म प्रदेश विशिष्ट आकार के होते हैं वहाँ से ग्रहण होता है। मन परे ज्ञान में भी जो आठ पाखुड़ी का जो है उसके टिप से वहाँ से ग्रहण होता है, ऐसे शास्त्र में कथन आता है। तो ये संपूर्ण ही यहाँ से कोई हाँ सर्वांग सर्वांग से उनके होते हैं अवधि ज्ञान, यानी जो भव प्रत्यय अवधि ज्ञान है उसकी बात करें, परंतु वो सभी पदार्थों को नहीं जानता है इसलिए उसको सकल प्रत्यक्ष नहीं कहते, एक देश प्रत्यक्ष कहते। नहीं, जब अवधि ज्ञान की पर्याय यानी उपयोग रूप चल रहा है, देखो क्षोपशम ज्ञान है उसमें उपयोग लब्धि और उपयोग दो प्रकार होते, ज्ञान की प्रकट पर्याय में लब्धि और उपयोग होते हैं। जैसे हम कहेंगे एट ए टाइम कितने ज्ञान है एक जीव को, तो हम कहेंगे उसको मति ज्ञान भी है, शुद्ध ज्ञान भी है, अवधि ज्ञान भी है और मन परे ज्ञान भी है, गणधरों को चारों ही ज्ञान है। तो उपयोग रूप ज्ञान कितने हो गए एट ए टाइम, एक होगा कोई, अवधि ज्ञान में उपयोग लगा है तब तब उसी समय मति शुद्ध मन परे नहीं है उनके, उपयोग रूप व्यापार किसमें चल रहा है उस समय अन्य ज्ञान नहीं, उसके प्रकट पर्याय में है, क्योंकि वो तीनों ही अन्य ज्ञान वहां लब्ध रूप से प्रकट पर्याय में है, शक्ति रूप हो ऐसी भी बात नहीं है, ये लब्धि रूप होना और शक्ति रूप होना अलग बात है। शक्ति रूप तो हमें अभी केवल ज्ञान भी है, केवल ज्ञान का सामर्थ्य अभी हमें पड़ा है, परंतु जब हमारा मति रूप उपयोग चल रहा है तो श्रुत ज्ञान और मति ज्ञान के सभी भेद जो अन्य है वो अपना लब्धि रूप है पड़ा हुआ। जैसे अभी हम शास्त्र ज्ञान में जुड़े हैं तो हमारा इतिहास भूगोल गणित और अन्य भाषाओं का ज्ञान जो कुछ है व्यापार संबंधी ज्ञान वो प्रकट पर्याय में है। अभी मैं पूछूं वेदों में कितने होते हैं, चार, कैसे बताया झट से, ये तो प्रकट पर्याय में है, वो चल रहा है, वो सारा जिस समय चाहे उपयोग रूप हो जाता है, ख्याल है ना। तो यहाँ क्या कहते हैं, द्रव्य क्षेत्र काल और भाव के विकल्प से यानी भेद से अनेक प्रकार के पुद्गल द्रव्य को जो प्रत्यक्ष जानता है उसे अवधि ज्ञान कहते हैं। प्रत्यक्ष का अर्थ होता है उन्हें इंद्रिय और मन का वहां अवलंबन नहीं है, इसको कहते हैं प्रत्यक्ष। केवल ज्ञानी को भी कितनी इंद्रियों का अवलंबन है, कुछ नहीं है। यह ज्ञान द्रव्य की अपेक्षा, अब जब जब द्रव्य की अपेक्षा कहेंगे तो पुद्गल द्रव्य को जानता है ऐसा उसका उत्तर नहीं है, तो द्रव्य की अपेक्षा यानी कितनी संख्या को जानता है, कितने द्रव्य को यानी कितने पुद्गलों को जानता है उसकी बात है। द्रव्य अपेक्षा यानी कितने द्रव्यों को जानता है, तो पहले में पहले उन्होंने बात की कि जघन्य अवधि ज्ञान, तो जघन्य अवधि ज्ञान कम द्रव्यों को जानेगा कि ज्यादा द्रव्यों को जानेगा? हाँ बोलो। जघन्य अवधि ज्ञान कम द्रव्यों को जानेगा कि ज्यादा द्रव्यों को जानेगा? मैंने जघन्य की बात की, ज्यादा जानेगा क्या कम जानेगा? देखो, हम ऑप्थल्मोलॉजिस्ट के पास गए आंख चेक करने के लिए, तो हमारी नजर कमजोर हो गई है। तो वहां ऊपर इतने बड़े लेटर्स थे, फिर छोटे लेटर्स थे, फिर छोटे लेटर्स थे, और बाद में बिल्कुल छोटे लेटर्स थे। तो जिसकी आंख कमजोर है वो इसको जानेगा कि इसको जानेगा? तो इस कंध को, यानी उसका मिनिमम, अब ये हो सकता है यहाँ तक उसने जाना, तो ये उसकी लिमिट है। जिसकी आंख पावरफुल है उसकी लिमिट और नीचे तक जाती है, सूक्ष्म तक जाती है, और जिसकी बिल्कुल पावरफुल है वो एक पॉइंट तक उसको जानेगा। वैसे जघन्य अवधि ज्ञान इतने स्कंद को जानेगा, इतने स्कंद को जानेगा तो उसके बड़े, बहुत बड़े स्कंद है, उसको तो जानेगा ही जानेगा। इतने को जानता है तो पर्वत को जानेगा कि नहीं जानेगा? तो जघन्य अवधि ज्ञान की लोअर लिमिट क्या है उसको बताया जाता है, क्या ना? इससे सूक्ष्म पदार्थ को वो नहीं जानता है। तो ये जघन्य अवधि ज्ञानी कितने द्रव्य को जानता है, तो यहाँ अनेक परमाणुओं का स्कंद कितना बड़ा है उसकी डिस्क्रिप्शन करेंगे। इतने स्कंद तक जानता है नहीं, ये उसकी लोअर लिमिट बता रहे। लोअर एक परमाणु है। जघन्य अवधि ज्ञान का ज्ञान यहाँ तक ही जानता है, उसका ज्ञान इसको नहीं जानता है। क्षेत्र की लिमिट अलग, अभी तो द्रव्य, द्रव्य की अपेक्षा ने कितनी कितना बड़ा स्कंद, वो छोटे में छोटा कितना स्कंद जानता है ऐसा ले लो। पुद्गल द्रव्य का छोटा में छोटा स्कंद कितने परमाणुओं के स्कंद को जानते हैं? वे बड़े स्कंदों को तो सभी जानेंगे। जो एक परमाणु को जानता है वो विशाल परमाणु के स्कंद को, अनेक बड़े बड़े स्कंदों को तो जानेगा ही जानेगा। परंतु जघन्य अवधि ज्ञानी की लोअर लिमिट क्या है? तो ये इतने स्कंद को जानेगा। तो ये स्कंद कितना बड़ा है उसका अब हम पढ़ेंगे। हाँ, सबसे उत्कृष्ट परमावधि वाला एक परमाणु तक जो को जाने, ये हम जघन्य की बात कर रहे हैं। जघन्य अवधि ज्ञानी यानी जिसका अवधि ज्ञान कम पावरफुल है, बराबर। तो यह ज्ञान द्रव्य की अपेक्षा जघन्य रूप से जानता हुआ, यानी जो जघन्य अवधि ज्ञानी है वो उसकी बात कर रहे हैं। एक जीव के अवतारिक शरीर के संचय के, क्या कहते हैं, कोई एक जीव है उसका अवतारिक शरीर का संचय ने, अवतारिक शरीर के जितने परमाणु है संचय ने, वो जो इकट्ठे ना, हमने जन्म से लेकर हर समय में अनंत परमाणु ग्रहण करते हैं, अनंत परमाणु छोड़ते चले जाते हैं, और ये अनंत अनंत हर समय वो बने भी रहते शरीर रूप से, तो उसको कहते हैं अवतारिक शरीर का संचय। यानी एक जीव के साथ अवतारिक शरीर के जितने परमाणु हैं उसके लोकाकाश के प्रदेश प्रमाण खंड करने पर, लोकाकाश में कितने प्रदेश है? असंख्यात। तो एक जीव के जो अवतारिक शरीर में परमाणु है, तो एक जीव के शरीर में जितने परमाणु है, जो पूरा बड़ा स्कंद है, उसने हमने असंख्यात टुकड़े कर दिए। कितने असंख्यात? असंख्यात की भी बहुत भेद है। तो लोकाकाश में जितने प्रदेश है उतने असंख्यात उसके भेद कर दिए। तो जो एक एक खंड जितना छोटा होगा उसमें भी कितने ही परमाणु होंगे, अनंत अनंत परमाणु होंगे उसमें भी। तो उसमें से जो एक खंड है वहां तक को जानता है। या दूसरी अपेक्षा अगर बता देंगे, तो हमने देखा था अवगाहना के भेद, शरीर के अवगाहना के भेद। जैसे सबसे बड़ा शरीर कौन धारण करता है? तो वो मत्स्य जो है, स्वयंभू रमण वाला, 12.5 करोड़ घन योजन वाला। और सबसे छोटी अवगाहना वाला जीव कौन है? सूक्ष्म निगोद लब्धि अपर्याप्तक जीव, उसमें भी देखा था हमने तीसरे समय में, उसकी अवगाहना सबसे जघन्य होती है। तो ये जो सूक्ष्म निगोध लब्धि अपर्याप्तिक्ति सबसे जघन्य जो अवगाहना है, उतने स्कंद को जघन्य अवधि ज्ञानी जानता है, उसके नीचे वाले उससे कम अवगाहना वाले को नहीं जानता। इसको एक शरीर खंड कहा है। अनंत परमाणु वहां भी हो गए, निगोद के जीव भी शरीर के परमाणु उसके कितने हो गए, अनंत परमाणु हो गए। उसकी जितनी अवगाहना है, उसका जितना साइज है, उस साइज को लेना यहाँ, तो उतने साइज तक को वो जानता है जघन्य अवधि ज्ञानी। ये बात ख्याल में है। ये द्रव्य अपेक्षा में साइज बताते, उसमें कितने द्रव्य यानी कितने परमाणुओं का स्कंद है उसको बताते। अब आगे हम देखेंगे उत्कृष्ट रूप से।
मैं थोड़े से बीच में बोल रहा हूँ, देखो जो जघन्य अवगाहना बताई है वो सूक्ष्म निगोद या जीव जो लब्धि अपर्याप्तक है उसके तीसरे समय की जो अवगाहना होगी वो सबसे कम अवगाहना है, यानी उसका आकार जो है। अब वो अवगाहना कितना है तो हम देखेंगे तो असंख्यात प्रदेश वाली अवगाहना है, और वो असंख्यात प्रदेश जो वो एक्यूपाई करता है, व्याप्त करता है, वो जितना साइज होगा उतने साइज में जो स्कंद होंगे, या अभी वो असंख्यात प्रदेश को हटा दीजिए, उसमें जो स्कंद होगा, वो जो स्कंद होगा उसमें अनंत परमाणु होंगे, और उन अनंत परमाणु रूपी जो स्कंद है उसको वह जघन्य अवधि ज्ञान वाला जानेगा। मान लीजिए उसमें 100 परमाणु है, वो 100 परमाणु को जानेगा। हाँ,
यानी उससे छोटे स्कंद को नहीं जानेगा।
अभी
साइज में
100 को जानता है तो 99 को नहीं जानेगा, क्योंकि उसकी लिमिट 100 जानने की है। तो वैसे उसने जो जाना है वो अनंत परमाणु का जो स्कंद है, तो उसका साइज कितना है, अरे निगोदिया जीव कितना है वो हम नहीं देख सकते। हाँ, और अगर देखते तो आलू खाते क्या? हाँ, कंदमूल खाते
हम देखते ख्याल में है ना? निगोद ये सुई के नोक के ऊपर के टुकड़े में असंख्यात शरीर है, उसमें से एक एक शरीर जितना बड़ा है ना, उतने तक वो जानते हैं।
यानी हमें यहाँ तो अवधि ज्ञान की बात देखनी है। अवधि ज्ञान सिर्फ पुद्गल को ही जानता है। अवधि ज्ञान सिर्फ पुद्गल को ही जानता है। वॉल्यूम बताना,
अवगाहना की बात है।
तो असंख्यात शरीर,
असंख्यात शरीर है, उसका एक शरीर कितना छोटा है, वो एक शरीर तक के वो द्रव्य, वो उसके द्रव्य की अपेक्षा लिमिट हो गई, उससे छोटे स्कंद को नहीं जाने।
द्रव्य यानी यहाँ पुद्गलों का स्कंद लेना
किसमें?
हाँ, वो बात यहाँ नहीं है। आप जो कह रहे हैं
शरीर में अनंत जीव है। देखे
क्या
तीसरा समय ने कौन सा, मैं बताती हूँ। शरीर धारण करने का तीसरा समय है, जैसे शरीर धारण करने का तीसरा समय, निगोद जीव कहीं से मरकर आया, विग्रह वृत्ति से आया, और उसने शरीर धारण करने के पहले समय में परमाणुओं को ग्रहण किया, औदारिक शरीर के परमाणुओं को ग्रहण किया, और वहाँ वो शरीर रचना चालू हो गई। तो पहले समय में उसका ऐसा क्यूबिकल फॉर्म होता है, दूसरे समय में वो ऐसा यानी एग्जैक्ट क्यूब हो जाता है, और तीसरे समय में वो राउंड हो जाता है। तो राउंड का जो घनफल है वो सबसे छोटा होता है। ये पहले समय में ऐसा शेप है, दूसरे समय ऐसा है, तीसरे समय में ऐसा है, बॉल जैसा। तो उसका जो घनफल आता है वो सबसे छोटा है, घन क्षेत्रफल भी कहते हैं उसको। तो हाँ, इसमें लिया था ये। हाँ, जघन्य अवगाहना वाली बात थी। तो यहाँ तक के स्कंद को जानेगा वो अवधि ज्ञानी, जघन्य अवधि ज्ञानी भी इतना छोटा स्कंद को जानेगा।
यानी अवधि ज्ञान के जो अनेक प्रकार है उसमें जघन्य द्रव्य को जानने वाला जो अवधि ज्ञानी है, द्रव्य यानी पुद्गल के स्कंद को जानने वाला, वो इतना ही छोटे में छोटा स्कंद जानेगा, इससे छोटा स्कंद को नहीं जानेगा।
यानी कोई भी अवधि ज्ञानी इतने को तो जानेगा ही। जानेंगे ना, ये तो बड़े है। वो उसकी छोटी लिमिट बताई, जो एक इंच को जानता है वो तो 10 इंच वाले को तो जानेगा ही ना, ख्याल है ना। उसकी लिमिट कहाँ, हम लोअर लिमिट बता रहे, हमारी वो आईसाइट का उदाहरण ख्याल में लेना। वो 4 देखता है, जो छोटा अक्षर देखते हैं वो बड़ा अक्षर तो देख ही लेते हैं, तो उसके वो छोटे के लिमिट तक हम जाते ही, उतनी पावर कितनी है, हाँ तो लोअर मोस्ट लिमिट कितनी है, तो इसकी इतनी है। बिल्कुल जानेगा, क्योंकि ये बड़े हैं सब। हाँ, ये तीसरे समय में, फिर आगे चलकर उसकी अवगाहना अलग हो जाती, बढ़ जाती थी। ये कितना जानता है उसकी बात है, ख्याल है। अब इसके आगे वाला पावरफुल अवधि ज्ञानी, अभी इसके आधे को जानेगा, इसके पाव को जानेगा, इसके टेंथ वाले को जानेगा, वेरिएशंस। अभी ऐसे अवधि ज्ञान जितना पावरफुल, उतने उसकी लोअर लिमिट कम कम हो जाएगी। मोस्ट पावरफुल अवधि ज्ञान होगा, उत्कृष्ट जिसको कहते हैं, वो 1 परमाणु तक को जानेगा, ख्याल आया। ये द्रव्य अपेक्षा में हम पावरफुल एक छोटे तक चले जाते हैं, क्षेत्र अपेक्षा में उल्टा होगा। क्षेत्र अपेक्षा में कम क्षेत्र तक जानता है जघन्य वाला, और उत्कृष्ट वाला बहुत लंबे क्षेत्र तक का जानता है। कितने क्षेत्र के परमाणुओं को जानता है वो बात वहां चलेगी, क्षेत्र में काल में आगे वो वहां, तो ऐसा उल्टा प्रोपोर्शन होगा। द्रव्य में ये उल्टा है, द्रव्य में कहां तक छोटे तक जानता है उसकी बात होगी, और जब क्षेत्र अपेक्षा कहेंगे कितने क्षेत्र तक जानता है, तो जघन्य अवधि ज्ञानी कम क्षेत्र तक जानेगा, और बहुत बड़ा अवधि ज्ञानी होगा वो लंबे क्षेत्र तक जानेगा, पूरा लोकाकाश जानेगा, असंख्यात लोक होते तो भी उतना जान लेता। ये बात अभी आएगी। यहाँ
देखो, यहाँ ये कहना है कि क्षेत्र की अपेक्षा से अवधि ज्ञानी कितने क्षेत्र तक के पुद्गलों को जानेगा, तो आप मान लीजिए कि 10 माइल तक वो जानेगा। अब जो 10 माइल वाला जानता है वो 1 माइल वाले को जानेगा कि नहीं, 11वें माइल पे जो है या 10 माइल के आगे वाले को जघन्य ज्ञानी नहीं जानेगा, ऐसा समझ लो। ये क्षेत्र की अपेक्षा रेगुलर प्रोपोर्शन है, ये द्रव्य में ही थोड़े से समझने में हमको तकलीफ होती है। तो द्रव्य में क्या कहा कि जो बड़े में बड़ा, मतलब जो जानेगा जघन्य वाला, उससे जो उत्कृष्ट वाला होगा छोटे के छोटे में जानेगा, बस ऐसा ही इतना समझ लेना।
अब यहाँ उत्कृष्ट रूप की बात कर देते,
ये तो बहुत इंटरेस्टिंग विषय है समझने वाले को।
हेलुसिनेशन वो तो मन के द्वारा है, वहाँ को अवधि नहीं होता, जिसको आप प्री साइट या क्या कहते हैं ना, फोरसाइट, वो अवधि ज्ञान में आ जाएगा। मगर हेलुसिनेशन वो तो मन के द्वारा, कोई असत कल्पनाएं है वहाँ, तो वो तो कल्पनाओं का खेल है हेलुसिनेशन, दैट इज नॉट अ फैक्ट, नहीं है वो। अवधि ज्ञानी तो जो है उसको जान रहा है, हेलुसिनेशंस वाले के कुछ है ही नहीं है, और उसके मन में ऐसी कल्पना होती है, उसे ऐसा लगता है कि सामने कोई खड़ा है, इमेजिनेशन से। हेलुसिनेशन इज सॉर्ट ऑफ इमेजिनेशन। मन पर्याय वाला उसके ही इमेजिनेशंस को जानेगा। हाँ, ये अवधि ज्ञान का विषय नहीं है। हाँ, ये जो टीवी पर कुछ चलता है ना, उसको ऐसा दिखता है, फिर वो ऐसा ही आंखें खून करता है, ये अवधि ज्ञान का, कुछ अवधि ज्ञान का भेद है वो। ये कोई चमत्कार नहीं है, ऐसे किसी को अवधि ज्ञान होता है और बताते हैं आपको ऐसे ऐसे होने वाला है, ऐसा होता है, चलो चलो, जो वो जो कुछ कहे वो करने के लिए तैयार होता है। ये जो सब मिथ्या मान्यताएं वगैरह चलती है, ऐसे लोगों को कुछ होते हैं थोड़े ऐसे कुछ अवधि वाले। अरे तीरंजों को भी हो सकता है कुछ अवधि, तो नारकी देवों में तो होता ही है, वो तो उनका भव प्रत्यय अवधि होता है। हाँ हाँ, इनबॉर्न। ये तो जघन्य की बात ख्याल में आई ना, जघन्य अवधि ज्ञान द्रव्य की अपेक्षा कितने तक को जानता है उसकी बात है। उत्कृष्ट रूप से अर्थात उत्कृष्ट अवधि ज्ञान 1 परमाणु तक को जानता है, उसको कहते हैं वो सर्वावधि ज्ञान। अब उसके जो बीच वाले जो भेद है ना, मध्यम भेद, उसको कहते हैं अजघन्य और अनुत्कृष्ट। ये हमने ये जघन्य वाला इतने तक का जानता है, और एक परमाणु तक को उत्कृष्ट वाला जानता है। ये हुआ जघन्य वाले का लिमिट और ये उत्कृष्ट वाले की लिमिट। और जो अजघन्य नहीं टूवर्ड्स जघन्य मध्यम ही, परंतु ये यहाँ तक के जो है जघन्य की ओर वाले मध्यम भेद उसको अजघन्य कहेंगे, और उत्कृष्ट की तरफ के भेद है उनको कहेंगे अनुत्कृष्ट कहेंगे। या आपने एक ही शब्द में बताना है तो इसको छोड़ो और इसको छोड़ो, और बीच वाले सब जो है वो मध्यम अवधि ज्ञान के भेद है। तो मध्यम वाले जो है मध्यम अवधि ज्ञान यानी जघन्य और उत्कृष्ट के अंतरालगत द्रव्य भेदों को जानता है। ये जघन्य का स्कंद यानी इतना द्रव्य हुआ, उत्कृष्ट का द्रव्य यानी एक परमाणु हुआ, और मध्यम अवधि ज्ञान ये बीच वाले भेदों को जानता है। आसान है, इसमें कुछ डिफिकल्ट नहीं। क्या लाया? ये तो द्रव्य की अपेक्षा से बात हुआ, अब क्षेत्र की अपेक्षा यानी अवधि ज्ञान कहाँ तक के क्षेत्र को जानता है। जैसे कोई अवधि ज्ञान यहाँ बैठा है तो उसका अवधि ज्ञानी कहाँ तक उसकी लिमिट है, तो हो सकता है कि ऐसे साइन एरिया तक ही उसकी लिमिट है, या बम्बई तक लिमिट है, या और बाहर चले जाओ तो सभी और 100-100 माइल सभी और उसकी लिमिट है। इस तरह से उसकी लिमिट कम ज़्यादा हो सकती है। तो वो कम से कम लिमिट कितनी होगी अवधि ज्ञानी की, और अधिक से अधिक कितनी होगी उसकी बात करते हैं। तो क्षेत्र की अपेक्षा अवधि ज्ञान जघन्य से यानी सबसे जघन्य अवधि ज्ञानी कितने क्षेत्र तक को जानता है, तो अंगुल के यानी उच्छेद अंगुल के असंख्यातवे भाग क्षेत्र को जानता है। अंगुल किसको कहना? तो ये उंगली जो है उसकी जो चौड़ाई है उसको अंगुल कहना। तो यहाँ उसको खास नाम लिखा है। क्या लिखा है पढ़ो? उच्छेद अंगुल। ये उच्छेद अंगुल क्या होता है? क्या अंगुल भी अलग अलग प्रकार के होते हैं क्या? तो अंगुल भी तीन प्रकार के हैं। एक ये वाला उच्छेद अंगुल, एक कहलाता है प्रमाण अंगुल, और एक कहलाता है आत्मा अंगुल। तो ये उच्छेद अंगुल क्या होता है? प्रमाण अंगुल होता है ना, तो ये इससे 500 गुणे होता है। उच्छेद अंगुल से 500 गुणा प्रमाण अंगुल होता है। तो पहले प्रमाण अंगुल किसको कहना? तो अपना जो अवसर्पिणी है भरत ऐरावत आदि क्षेत्रों की, जो अवसर्पिणी काल का जो पहला चक्रवर्ती होता है, तो उसके जो अंगुल है उसकी जो चौड़ाई होगी उसको प्रमाण अंगुल कहते हैं। और आत्मांगुल किसको कहना? तो अपने अपने काल, अभी हम पंचम काल के हैं, अभी वर्तमान में हम मनुष्य है, तो अभी के हमारी चौड़ाई कितनी उंगली की, वो हमारा आत्मांगुल हुआ। वो तो वेरिएबल है, चौथे काल में तो आत्मांगुल बड़ा होगा और पांचवे काल में छोटा होगा, छठे में और छोटा होगा। तो ये आत्मांगुल वेरीज अकॉर्डिंग टू काल। प्रमाणांगुल तो फिक्स है। और ये उच्छेद अंगुल क्या है? तो उसका गणित अभी यानी उसका माप हम देखेंगे। उत्सर्पिणी में क्या होगा? बढ़ते, परंतु वो अंतिम चक्रवर्ती उतना अंतिम वाला। हाँ, इसलिए हम अवसर्पिणी का पहला लिया, हम भरत चक्रवर्ती का ले लेंगे अपनी अपेक्षा से। उच्छेद अंगुल का माप क्या है? तो उच्छेद अंगुल के लिए हम कहेंगे कि 12 यव का एक अंगुल होता है। तो यव क्या होता है? तो हम पहले से सोचेंगे, उल्टा सोचेंगे। तो पहले में हाँ, तो उच्छेद अंगुल में परमाणु कितने होते? वो अनंत अनंत होते, परंतु उसका भी हम गणित देखेंगे। 12 यवों का वो उच्छेद अंगुल, यव यानी वो अनाज होता है ना जव, उसका माप कैसे निकालना? वो जव भी अलग अलग कालों में अलग अलग होगा, तो कोई फिक्स माप होना चाहिए ना, तो उसकी बात करेंगे हम। तो जो अनंत परमाणु, अनंत अनंत पुद्गल परमाणुओं का एक स्कंद है, उसका नाम है अवसन्नासन्न। पहले नंबर पर क्या नाम बताया? वो पुस्तक में नहीं है, आप सम्यक ज्ञान चंद्रिका के 256 पेज पर इसको पढ़ सकते हैं। तो ये आप घर में जाके फिर पढ़ना, तो ये अवसन्नासन्न जो स्कंद है उसमें अनंतानंत पुद्गल परमाणु होते हैं। ऐसे 12 अवसन्नासन्नों का एक सन्नासन्न नाम का स्कंद कहलाता है। ऐसे 12 सन्नासन्नों का फिर एक त्रुट रेणु कहलाता है। ऐसे 12 त्रुट रेणु का एक त्रस रेणु होता है। ऐसे 12 त्रस रेणु का एक रथ रेणु होता है। और ऐसे 12 रथ रेणु का ये जो उत्तम भोग भूमि वाला जो हम कहते ना वो न्यूबॉर्न घेटा, उसके बाल का अग्रभाग है उतना छोटा होता है। 12 रथ रेणु इतना उसका एक वो भोग भूमि वाले का जो बाल का अग्रभाग है, उत्तम भोग भूमि वाले को पहले लेना। तो जो मध्यम भोग भूमि वाले के बाल का अग्रभाग होगा तो ये तो उत्तम भोग भूमि वाले के 12 अग्रभाग ले ले बालों के, यानी उससे 12 गुणा ये मध्यम वाले का बाल का अग्रभाग होगा। मध्यम वाले के बाल के अग्रभाग से 12 गुणा जगन्य भोग भूमि वाले के बाल का अग्रभाग होगा, और जगन्य भोग भूमि वाले के 12 गुणा कर्म भूमि वाले के बाल का अग्रभाग होगा। तो जो हम वो पल्य का खड्डा करते हैं ना, उसमें उत्तम भोग भूमि वाले के बाल डालते हैं। क्यों? अपना नहीं चलेगा तो अपना बाल कितने जा रहा है उससे मालूम है? हाँ, 12 × 12 × 12 × 12 करो। मैं गलत बोल रही हूँ। ये 12 चीजें हैं वो 8 गुना करना है। मैंने पहले से सब गलत बोल दिया है। 8 गुना आप कहना, वेरी सॉरी, ये 8 गुना है। अवसन्नासन्न के आगे ये 12 बातें हैं, वे 8-8 गुना है। मैंने भूल कर दी बोलते समय, अच्छा हुआ आपने याद दिलाया। 8-8 गुना है ये सब। हाँ, नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात है। 8 गुना है ये आगे के, यानी 8 × 8 × 8 × 8 करना, तो ये 4096 गुना हो गया अपने वाल का अग्रभाग। तो उसके बाद ऐसे 8 अग्रभाग ले लो कर्म भूमि के बाल के अग्रभाग, तो उसमें से एक लीक कहलाएगी। 8 लीक के एक सरसों, और 8 सरसों का एक यव, और 8 यव का एक अंगुल। ये पहले वाला 12 का मैंने प्रमाण बताया वो भूल जाओ, हर एक में 8-8 लगाओ। तो इस तरह से ये जो हमने अवसन्नासन्न के बाद जो 12 बातें देखी थी उसमें 8-8 गुना करना। ये 12 का वो उल्टा मैंने बताया, 12 गुना हो गया मेरा। तो इस तरह से हम ये अंगुल तक आएंगे। इस तरह से जो अंगुल का नाप निकलता है उसको कहते हैं उच्छेदांगुल। और जगन्य अधिज्ञानी कितने क्षेत्र तक को जानता है? उच्छेदांगुल के असंख्यातवे भाग प्रमाण क्षेत्र तक जानता है। वो अंगुल कितना छोटा होगा और उसका असंख्यातवा भाग कितना छोटा होगा, उतने प्रदेशों तक वो जानता है। ये ऐसा लंबा 1 फुट तक जानता है ऐसा नहीं, ख्याल है ना? उसका अधिज्ञान वहां तक ही चलेगा। यह लिखा ना, क्षेत्र की अपेक्षा अधिज्ञान जघन्य से अंगुल अर्थात उच्छेद अंगुल के असंख्यात भाग क्षेत्र को जानता है, और उत्कृष्ट से असंख्यात लोक प्रमाण क्षेत्र को जानता है। तो मेरा प्रश्न है, रूपी पदार्थ कितने क्षेत्र में है? एक लोक में। और यहाँ कितने लिखे? असंख्यात लोक में। हाँ, उसकी कैपेसिटी कितनी है? यदि ऐसे असंख्यात लोक तक रूपी पदार्थ होते तो उनको भी जानने की उनकी शक्ति है, ऐसा बताया जाता है। और मध्यम अवधि ज्ञानी कितने तक जानेंगे? इन बिटवीन, उच्छेदांगुल के असंख्यात भाग से लेकर असंख्यात लोक प्रमाण तक। ये जो मध्यम के अनेक भेद है उसमें ये वेरिएबल हो गए। अवधि ज्ञान के क्षेत्र अपेक्षा जानने की कैपेसिटी भी उसमें वेरिएशन उसका होता है। अब आगे जो हम काल और भाव की अपेक्षा है उसको कल फिर देखेंगे, इसको रिपीट करेंगे हम, द्रव्य क्षेत्र काल भाव को लेकर फिर आगे बढ़ेंगे। जावाणी के ज्ञान